In the book of Genesis, we read an incident in chapter 40.
उत्पत्ति 40 अध्याय में इस घटना को हम एक पढ़ते हैं.
This is a time when Joseph is in the prison.
और एक ऐसा समय है जहां यूसुफ बंदीगृह में है.
And one day when Joseph got up, he saw two of his friends.
और जब बंदीगृह के अंदर दो वो जब खड़ा हुआ तो दो व्यक्ति को उसने देखा.
Two of his co-prisoners.
और वहां पे दो बंदीगृह और जो थे बंदीवान जो थे उसके साथ में उसको उन्होंने देखा.
That's written in Genesis chapter 40 verse 6.
और उत्पत्ति उसका 40 अध्याय वचन 6 में लिखा है.
When Joseph came to them in the morning and observed them, behold, they were dejected.
और सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर आया तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखता है कि वे उदास है.
And he asked Pharaoh's officials who were with him in confinement in his master's house, why are your faces so sad today?
और इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदीगृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है?
This is a situation very often we see in our own lives.
और यही परिस्थिति कई बार हम अपने अक्सर जीवन में देखते हैं.
Some people, maybe our friends, maybe our wife, maybe our children.
और हो सकता है कि कई बार हमारे मित्र है, हमारे बच्चे या हमारी पत्नी.
And we see them sad for some turmoil in their life.
और कुछ न कुछ समस्या के कारण उनके जीवन के अंदर हम उनको उदास देखते हैं.
So we see in this situation, it is a good thing to think about it. Joseph, he is a prisoner.
और यहाँ पे एक अच्छी बात देखते हैं कि यहाँ पर यूसुफ जो है वो बंदीवान है, बंदीगृह में पाया जाता है.
If you think about it, he himself has a lot of problems in his life.
अगर उसके खुद के जीवन के बारे में सोचते उसके खुद के जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं.
He can have plenty of self-pity about himself.
और बहुत सारे इस परिस्थिति में होने के साथ साथ उसके जीवन में अपने खुद के जीवन में बहुत ही दया ऐसी हो सकती है.
And in this case, he is not in the prison because some fault he committed. It is no, he had not done anything wrong, but still he is in prison.
और इस हालात में, इस बंदीगृह में वो इसलिए नहीं कि उसने कुछ गलती की थी, लेकिन कोई भी उसकी गलती के बिना उस बंदीगृह में वो है.
But still in that situation, he could see some need of others.
लेकिन उस हालात के अंदर, उस बंदीगृह के अंदर भी वो औरों की जरूरत को देख पाता है.
Some people who were dejected.
और कुछ लोग जो बहुत ही तिरस्कार जिनका किया गया था.
Some people who were depressed.
और बहुत जो लोग जो थे निराश थे पूरी तरह से.
Some people who were discouraged.
और जो लोग पूरी तरह से हताश हो चुके हैं.
Some people who were struggling.
और जो लोग संघर्ष कर रहे हैं.
So Joseph was interested to find the reason.
और यहाँ पर यूसुफ के अंदर रुचि आती कि उस कारण को जाने.
And he thought, can I do anything in my situation to help them?
और वो सोचता है कि मेरी परिस्थिति में क्या कुछ मैं कर सकता हूँ ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं.
To lift them up from their deep pit.
और ताकि वो गहरे गड्ढे में से उनको मैं उठा सकूं, उनकी मदद कर सकूं.
So when Joseph had a desire, he had nothing in him. He is a prisoner, nothing.
और यूसुफ के अंदर जब इच्छा थी उसके पास कोई ऐसे चीज नहीं थी, वो तो एक बंदीवानी था.
He had no money, he had no resources to give to them.
और उसके पास कोई स्रोत नहीं था, कोई पैसा नहीं था ताकि वो उनको दे सके.
But he had a heart to help them.
लेकिन उसके पास एक हृदय था उनकी सहायता करने का.
So he had a heart, God made the provision.
उसके पास एक अच्छा हृदय था और परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया.
They had troubling dreams, both of them.
और उन जो व्यक्ति दूसरे बंदीवान थे उनको बहुत ही ऐसे समस्या या संघर्ष से भरे हुए कुछ ऐसे सपने आते हैं.
So that is the reason why they were dejected.
और उसके कारण वो बहुत ही निराश दिख रहे थे.
But when Joseph had a heart to help them, God gave him the ability to explain the meaning of those dreams.
और जब यूसुफ के पास वो हृदय आता है उनकी सहायता करने का, एक हृदय जब उसमें होता है तो परमेश्वर उसको योग्यता और क्षमता देखता है ताकि उनके सपनों का अर्थ वो उसको बता सके.
So as we are in the end of the year,
और जैसे हमें साल के अंतिम भाग में है,
this is something we can assess in our own life.
और ये कुछ हमारे जीवन के अंदर हम जांच सकते हैं.
We are, many of us are believers for many years.
और हम में से बहुत सारे बहुत सालों से, कई वर्षों से हम विश्वासी हैं.
This is something we can look at. Do I have a heart to help others?
और हम अपने आप को जांचते हुए अपने आप को देखें कि क्या मेरे पास ऐसा हृदय है जो औरों की सहायता करना चाहता है.
Do I have a concern for others?
और क्या औरों का ख्याल करने का हृदय मेरे अंदर है?
We may not have readily anything in an earthly way to give to them.
और हमारे साथ पृथ्वी के रीति से हमारे पास बहुत सारी चीजें नहीं होंगी कि उनको देकर हम सहायता कर सके.
But if a heart to understand the needs of others, God will give the resources.
लेकिन यदि हम औरों की जरूरत को समझने का अगर हमारे पास कोई हृदय है तो परमेश्वर हमें स्रोत देगा.
So it's good to at least let us start that when we are around, just like Joseph, he observed others who are rejected. Is there anybody dejected or discouraged so that he can help them?
और आज हम ऐसी शुरुआत कर सकते हैं यूसुफ को देखे जो पूरी तरह से औरों को देख रहा है कि कौन निराश है जिसकी मैं सहायता कर सकता हूँ.
So I want to share some thoughts on developing a concern for others.
और आज मैं कुछ विचारों को आपके सामने बांटना चाहता हूँ कि हम औरों के प्रति ख्याल या उनकी चिंता करने का स्वभाव हमारे अंदर विकसित करें.
Our life should be a source of comfort and blessing to others if we have a concern for others.
और यदि हम औरों का ख्याल करेंगे औरों की चिंता करेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही आशीष से भर जाएगा.
We may not have anything to give to them, but if you have a concern, God will give you the resources.
और यदि देने के लिए अगर हमारे पास कुछ नहीं होगा लेकिन हम उनके लिए ख्याल करते उनकी चिंता करते हो परमेश्वर वो स्रोत को देगा.
In Isaiah chapter 50,
और यशाया के 50 अध्याय में देखते हैं.
We read in verse 4.
यशाया 50 उसका 4 वचन.
The Lord has given me the tongue of disciples that I may know how to sustain the weary one with a word.
और प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन द्वारा संभालना जानूं.
It's something which you can pray and seek in our life.
और ये ऐसी बात है जिसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं उसको हमारे जीवन में खोज सकते हैं.
Lord grant me the tongue of a disciple.
और यहाँ पे लिखा है कि सीखने वाले एक शिष्य की एक जीभ मुझे प्रभु तू दे.
So that I can sustain someone, lift up someone, encourage someone.
और ताकि मैं किसी को संभालू किसी को प्रोत्साहित करूँ किसी को मैं उठा सकूँ.
May not be with money or earthly resources. I may not have anything.
और मेरे पास शायद दुनिया की रीति से पैसा या कोई स्रोत नहीं होंगे उसको मदद करने के लिए शायद.
I can express, share a word of encouragement.
लेकिन उसके साथ मैं एक प्रोत्साहन का वचन उनके साथ बांट सकता हूँ.
I can impart a hope to his life.
और उसके जीवन में एक आशा को उसको दे सकता हूँ.
Something we can all desire and pray for.
और इसकी हम इच्छा कर सकते हैं और इसके लिए हम सभी प्रार्थना कर सकते हैं.
To have a word always to sustain a weary one.
और वहां पर एक जो थके हुए व्यक्ति को हम संभालने वाला वचन हमारे पास हमेशा हो.
नॉट टू पुट अदर्स डाउन.
और औरों को नीचा दिखाने या नीचा करने वाला नहीं.
नॉट टू कंडम एनीबॉडी.
किसी को दोषी या दंडित ठहराने वाला नहीं.
और जज एनीबॉडी.
किसी को न्याय करने वाला नहीं.
बट अ वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट.
लेकिन प्रोत्साहन का एक वचन.
एंड देयर इज अ वर्स इन प्रोवर्ब्स चैप्टर 11:25
और नीति वचन 11:25 में एक वचन है.
इट सेज दैट प्रोवर्ब्स 11:25
नीतिवचन 11 अध्याय वचन 25.
The generous will prosper, those who refresh others will themselves be refreshed.
और उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी.
This is an interesting thing to remember.
और ये बहुत ही दिलचस्प यहाँ पर बात है जिसको हम याद रख सकते हैं.
When we have a heart to encourage others, refresh others.
और जब हमारे पास एक हृदय होता है ताकि हम औरों को ताजगी दे औरों को प्रोत्साहित करने वाला हृदय जब हमारे पास होता है.
And when we practice that, refreshing, encouraging others whenever there's a need, opportunity.
और जहाँ कहीं मौका है जहाँ कहीं जरूरत है वहाँ हम इसको काम में लाते हैं औरों को प्रोत्साहित करते हैं उनको हम ताजगी से भरते हैं.
Some situations in our own life, God will arrange to someone else to refresh ourselves.
और जब यदि ऐसा हम करते तो हमारे जीवन में जब ऐसी हालातों का सामना करते तो परमेश्वर प्रयोजन करेगा किसी और के द्वारा हमको प्रोत्साहित करने का.
That's what he say. He who refreshes others will themselves be refreshed.
और यहाँ पे वही लिखा है कि जब हम दूसरों की खेती सींचते तब उसकी भी सींची जाएगी हमारी भी सींची जाएगी.
For years, you know, somebody in the New Testament, that very name used to encourage me.
और एक नए नियम के अंदर बहुत सालों तक एक नाम ही है जिससे मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता था.
There's a name, Barnabas.
और एक नाम है जो लिखा गया है बर्नबास.
And I remember Barnabas, I am encouraged.
और जब उस नाम को केवल बर्नबास नाम को मैं स्मरण करता हूँ मुझे एक प्रोत्साहन मिलता है.
The very name, meaning of that name is son of encouragement.
और उस अर्थ जो नाम का अर्थ है वही है कि एक प्रोत्साहन का पुत्र.
Is a wonderful name to have, Barnabas.
और बर्नबास एक अच्छा नाम है रखने के लिए.
Son of encouragement.
और प्रोत्साहन का पुत्र.
Because he had always a spirit of encouraging others.
क्योंकि उसके पास हमेशा औरों को प्रोत्साहन देने वाली ही आत्मा थी.
Actually the apostles called him Barnabas because he was which is meaning son of encouragement.
क्योंकि प्रेरितों ने उसको बर्नबास कहा क्योंकि वो प्रोत्साहन का पुत्र था.
So we can be brothers and sisters और
हम भी ऐसे भाई और बहन बने जब कोई और हमारे लिए हमें याद करे तो वो सोचे इस बात को कि वो भाई जो है वो प्रोत्साहन देने वाला भाई या बहन है.
We can all be like a Barnabas.
हम सब बर्नबास के समान बन सकते हैं.
Sons and daughters of encouragement.
और प्रोत्साहन के बेटे और बेटियां हम बन सकते हैं.
This is something we can pray and secretly desire in our Lord, help me Lord, not to put others down. There are so many needy people around. In my own home I see.
और हम लोग इसके लिए हम इच्छा रखें कि प्रभु बहुत सारे लोग हैं मेरे परिवार के अंदर ऐसे बहुत सारे जरूरतमंद लोग हैं.
Someday we can see our children being bullied and they come back discouraged. They will not even open their mouth and speak sometime.
और कई बार हमारे बच्चे देखते हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है बहुत सारी परिस्थितियों से जाते हैं ताकि बहुत परीक्षण में आते ताकि वो अपने मुख को खोलकर वहां पर कुछ बोले.
May not be so good in some areas in study or whatever.
उनकी पढ़ाई में शायद बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर वो शायद अच्छे नहीं होंगे.
But we can encourage them, lift them up.
लेकिन हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं उसको उठा सकते हैं उनको.
Show some other side of their life which where they are strong and good than others.
और उनके जीवन के ऐसे भाग को दिखाकर उनको प्रोत्साहित कर सकते जो औरों से बेहतर है.
Seek to be a son of encouragement like Barnabas.
और बर्नबास की तरह प्रोत्साहन के पुत्र बनने की आप खोज करें.
Paul in a concluding message to Ephesian believers.
और इफिसियों के पत्र इफिसियों के विश्वासियों को लिखते हुए अंत में पौलुस लिखता है
in Acts chapter 20.
और प्रेरितों के काम 20 अध्याय में
he was parting with them, he gave the parting message to them.
और अंत में जब वो वहां से निकल रहा था तब उसने एक संदेश वहां पर दिया.
But he left a final thought to there, something a takeaway left with them.
और वहां पर जब वो वहां से निकल रहा था एक अंतिम विचार उसने उनको दिया वहां के लोगों
in Acts chapter 20 verse 35.
और प्रेरितों के काम 20 अध्याय वचन 35.
It reads like this. In everything I have showed you that working hard in this manner, you must help the weak and remember the words of the Lord Jesus Christ that he himself said, it is more blessed to give than to receive.
और मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है जो उसने आप ही कहा लेने से देना धन्य है.
We all like to receive.
और हम में से हर एक को पसंद है कि हम कुछ ना कुछ प्राप्त करें या हम ले.
There is nothing wrong in life.
और ये हमारा स्वभाव है इसमें कोई गलत नहीं
and
है.
And we need to receive.
और हमको प्राप्त भी करना चाहिए.
And there is a blessing in receiving.
और लेने में भी एक आशीष है.
When in the time of need it is provided. If we received, it is a blessing.
और जरूरत के समय अगर हमारे लिए वहाँ पे प्रयोजन किया जाते उसको हम ग्रहण करते वो आशीष है.
But Jesus was telling something another plane.
लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर एक और एक स्तर के ऊपर बात कर रहा है.
It is a good thing, it is a blessing to receive.
और यहाँ पे अच्छी बात है लेना.
But there is something more blessed.
लेकिन उससे भी कोई धन्य बात है.
What is that?
और वो क्या है?
That is giving.
और वो है देना.
So it's a more blessing to give.
और ये बहुत ही आशीषमय और धन्य बात है कि हम दे.
So we should be seeking, growing from a desire to receive, then and from there we have to grow into a spirit of giving.
और हमें हमारी इच्छा के अंदर आत्मा के अंदर लेने से ज्यादा देने के अंदर हमको और बढ़ते जाना है.
Whatever, maybe giving may be words of encouragement.
और ये देना क्या हो सकता है प्रोत्साहन का एक वचन हो सकता है.
I remember I mentioned this before when I was very young, something which I heard from Brother Zach.
और जब मैं जवान था मुझे याद आता है जब मैंने ब्रदर जैक से इस बात को सुना था.
It is a challenge to me.
और इससे मुझे चुनौती मिलती है.
What he said is, no, today for example when I knew that today I was supposed to share, even though I was traveling I was praying, meditating, what should I share.
और जैसे मुझे पता है कि मैं यात्रा में था और मुझे आज यहाँ पर बांटना था और मैं सोच रहा था कि मैं क्या बांटू.
एंड इफ आई वेर नॉट शेयरिंग प्रॉब्ली आई वुड नॉट हैव गिवन दैट अटेंशन.
और यदि मैं यहाँ पे वचन को बांटता नहीं तो शायद उतना उस पर ध्यान नहीं देता.
सो व्हाट इज दैट इज एवरी डे व्हेन एवरी संडे व्हेन यू गो टू चर्च.
और ये इससे क्या सीख मिलती है कि हम प्रति संडे रविवार को जब हम चर्च जाते हैं
गो एज यू आर गिविंग द मेन वर्ड.
और आप इस तरह से जाइए हर रविवार चर्च के अंदर ताकि जैसे कि आप ही एक मुख्य संदेश आप ही दे रहे उस तैयारी के साथ आप चर्च में जाए.
Go as if you are supposed to preach today.
और इस तरह से तैयारी के साथ आप जाए जैसे कि आज आप मुख्य संदेश बांटने वाले उस तैयारी के साथ.
That way seek the Lord. So even if we don't have, we have 1 minute or we have no time, still we can bless others.
और इस तैयारी के साथ जहां शायद हमें एक मिनट मिले या किसी को हम प्रोत्साहन का वचन दे सकते हैं.
So when you come to church every Sunday, when you come for Sunday meeting every Sunday, we can think about that. I, Lord, give me something. even if I did not get a time in the main message, maybe in the breaks, lunch time, I can have share a word of encouragement to others.
और उसी तरह से परमेश्वर के पास हम मांगे कि प्रभु जब कभी मैं रविवार को मैं कलीसिया में जाता हूँ प्रभु मुझे प्रोत्साहन का वचन दे, शायद मुझे यहाँ पे वचन बांटने के समय पर नहीं मिलेगा लेकिन ब्रेक या संगति के समय उस प्रोत्साहन के एक वचन को मैं किसी को बांट सकता हूँ.
1 Corinthians chapter 11.
पहला कुरिन्थियों उसका
chapter 14.
पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय.
I encourage if you're interested when you have time, good to read 1 Corinthians chapter 12, 13 and 14 together.
मैं प्रोत्साहित करता हूं कि जब आपके पास समय पहला कुरिन्थियों 12, 13 और 14 अध्याय को आप साथ में पढ़े.
So in 1 Corinthians chapter 14, Paul is encouraging the believers to seek spiritual gifts.
और यहां पे पौलुस जो कुरिन्थियों के विश्वासियों को आत्मिक वरदानों की खोज में रहने के लिए प्रोत्साहित करता है.
And we should remember why God gives us gift of the Holy Spirit.
और हमें याद करना है कि क्यों पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के वरदानों से क्यों भरना चाहता है.
It is primarily to serve others.
और पहली प्राथमिक रीति से ताकि हम औरों की सेवा कर सके.
Just like Jesus washed the feet of disciples.
और जैसे यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैरों को धोया.
And conveyed a message through that action.
और उस कार्य के द्वारा उसने एक संदेश को वहां पे संकेत दिया.
Spiritual gifts are given so in order to serve others.
आत्मिक वरदान इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम औरों की सेवा कर सके.
It is not to show off that I have this gift, you don't have this gift.
और ये इसलिए आत्मिक वरदान नहीं मिलते लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे पास ये वरदान है आपके पास नहीं है.
So with that spirit we can always desire and seek and pray, Lord, give me the gifts of the Holy Spirit which is beyond my natural ability.
और इस इच्छा के साथ परमेश्वर से मांग सकते हैं, प्रभु मुझे आत्मा की वरदान दे जो मेरी स्वाभाविक योग्यता से बढ़कर है.
So that I can serve your people.
ताकि मैं तेरे लोगों की सेवा कर सकूं.
And when God sees that our only intention is not secretly seek any honor from others, but my intention is only to serve others.
और मेरे जो विचार है, मेरी जो इच्छा है, वो वहाँ पर कोई भी गुप्त रीति से आदर पाने का नहीं, लेकिन केवल एक ही उद्देश्य है, उसकी मैं सेवा औरों की सेवा कर सकूं.
God can give supernatural gifts of the Holy Spirit.
और परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के अलौकिक वरदानों को दे सकता है.
So that he can bless the body of Christ.
और ताकि मसीह के देह को आशीष दे सके.
So in 1 Corinthians chapter 14 verse 1.
पहला कुरिन्थियों वचन अध्याय 14 वचन 1.
Pursue love yet desire earnestly spiritual gifts.
प्रेम का अनुकरण करो आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो.
So it is good to note that Bible is encouraging us to earnestly seek spiritual gifts.
और ये अच्छी बात है जिसे बाइबल में यह बताता है कि आत्मिक वरदानों की धुन में उसको हमको खोजते रहना है.
And it says that especially that you may prophesy.
और विशेष करके ये कि तुम भविष्यवाणी कर सको.
Not that especially that you may prophesy.
और यहाँ पे लिखा विशेष करके तुम भविष्यवाणी करो.
It is important to understand the meaning of it.
और उसका मतलब उसका अर्थ समझना बहुत ही मुख्य बात है.
Many Christians are satisfied when they have a gift like for example a gift of tongues.
और बहुत सारे विश्वासी संतुष्ट हो जाते हैं जब उनको अन्य भाषा का वरदान मिलता है.
It's good to have. We all should be speaking tongues.
और बहुत अच्छी बात है, हम सभी को अन्य भाषा में बोलना चाहिए.
Paul said, I speak more than all of you in my secret life.
और पौलुस कहते हैं मेरे गुप्त जीवन में किसी से भी बढ़कर आप सबसे बढ़कर मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ.
Because speaking tongues edify oneself.
क्योंकि जो अन्य भाषा में बोलता है वो अपनी ही उन्नति करता है.
In time of difficult, we don't know what to pray. It's a great aid to pray according to the will of the Holy Spirit.
और संकट के समय में नहीं पता चलता कि हमें क्या प्रार्थना करना है, लेकिन अन्य भाषा में परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करते हैं, वो अच्छी बात है.
Tongues edifies oneself.
और अन्य भाषा जो है हमारी उन्नति करता है.
And some other people are happy if there is a gift of healing.
और बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं जब उनको चंगाई का वरदान मिलता है.
It's good to have a gift of healing. It helps others.
और चंगाई का वरदान होना अच्छी बात है, उससे औरों को सहायता मिलती है.
Our intention should never, never even remotely be seeking honor.
और इन सारी बातों के पीछे हमारी इच्छा या हमारे इरादे कभी भी हमारे लिए आदर खोजना नहीं होना चाहिए.
More than anything, Paul is encouraging the believers to pursue and desire the gift of prophecy.
और हर चीज से बढ़कर पौलुस यहाँ पर आशा करता है, प्रोत्साहित करता है, विशेष करके भविष्यवाणी का वरदान तुम्हारे अंदर रहे.
He has explained the reason. Verse 2. The one who speaks in a tongue does not speak to men but to God. Yeah. And verse 2. The one who speaks in verse 3 it says the one who speaks in a tongue edifies himself.
परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति करता है वो.
Verse 4. But one who prophesies edifies the church.
परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है.
That is why the gift of prophecy is something to really earnestly desire.
और इसी कारण से मैं भविष्यवाणी का वरदान को बहुत ही आतुर और इच्छा के साथ हमको खोजना है.
It's good to seek and receive the gift of tongues so that in my personal life I can edify myself.
और इससे हमें ये अन्य भाषा की अच्छी बात है ताकि हम व्यक्तिगत जीवन में उन्नति प्राप्त करूं.
But it's still better to seek the gift of prophecy.
लेकिन उससे भी बेहतर है कि मैं भविष्यवाणी करने का एक मैं इच्छा को रखूं.
So that I can without my own knowledge I can edify, lift up my brothers and sisters.
और ताकि मेरी जानकारी के बगैर ही मैं और लोगों को उठाना जान उनको प्रोत्साहन करना जान सकूं.
Some brothers and sisters have come with various needs and cry in their heart, but someone is sharing maybe 2-3 minutes. His needs are met. He is edified. His needs are satisfied.
और बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत ही अपने हृदय के अंदर एक बहुत ही ऐसे एक तकलीफ के साथ ऐसे दर्द के साथ यहाँ पर आ सकते हैं. आपके एक या दो मिनट के उस प्रोत्साहन के वचन से उनकी जरूरत को पूरी आप होते हुए देख सकते हैं.
And three things happen when we prophesy.
और जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो तीन चीजें वहाँ पर होती है.
Verse 3.
वचन 3.
The one who prophesies speaks to men for edification, exhortation and consolation.
परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति उपदेश और शांति की बातें करता है.
When someone prophesy, these three things happen.
और जब कोई भविष्यवाणी करता है ये तीन चीजें वहां पर होती
है. It edifies somebody.
और किसी को वो प्रोत्साहित उठाता है.
It exhorts somebody.
और वहां पे किसी को वो exhort करता है.
It comforts or consoles somebody.
और किसी को सांत्वना देता है.
That is why the prophecy is something to be desired and bless others.
और इसीलिए हमें भविष्यवाणी के वरदान को खोजना है ताकि मैं किसी को आशीष दे सकूं.
Through some utterance, a few words I uttered, I said, I shared something which I meditated, something Holy Spirit gave to me. I said, I took maybe 1 minute, but it blessed others, it edified, exhorted, it comforted somebody.
और हो सकता है कि एक या दो मिनट जो पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर रखा था उसको मैंने वहां पर कहा और उस प्रोत्साहन के वजह से किसी को प्रोत्साहन या सांत्वना मिलता है.
So I want to encourage everyone, dear brothers and sisters, continue to pray and desire, Lord, grant me the gift of prophecy.
और प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको ये प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर से मांगे कि प्रभु तू मुझे प्रोत्साहन, ये भविष्यवाणी करने का ये वरदान प्रभु तू मुझको दे.
So that I can naturally edify somebody.
ताकि मैं स्वाभाविक रीति से औरों को उठाना जानूं या उनको प्रोत्साहित कर सकूं.
I can exhort somebody.
ताकि मैं और को और सांत्वना दे सकूं, प्रोत्साहन दे सकूं.
I can comfort or console a brother or sister.
और जो भाई और बहन है उनको मैं शांति या सांत्वना दे सकूं.
And it says in verse 12.
वचन 12.
Since you are zealous for spiritual gifts, seek to abound for the edification of the church.
और इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो.
और our intention, our desire is nothing's my own.
और हमारी इच्छा या हमारा जो सारा जो उद्देश्य है वो किसी भी रीति से हमारे खुद के लिए नहीं है.
आई एम सीकिंग द एडिफिकेशन, लिफ्टिंग अप ऑफ द चर्च, लिफ्टिंग अप ऑफ द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स.
और मेरी इच्छा हमेशा कलीसिया के जो भाई बहन है उनको उठाना, उनको प्रोत्साहित करना है.
सो the theme of my message is developing a concern for others.
और आज जो शीर्षक मेरे संदेश का वही है कि औरों के लिए ख्याल करना है, उनको प्रोत्साहन करने का एक स्वभाव हमारे अंदर विकसित करना.
May God give us this heart to look at when we see others with a heart of concern and willingness to help them.
और जब कभी हम किसी औरों को देखें तो हम उनको स्वभाव के साथ वो चिंता या उनके ख्याल करने के स्वभाव से देखें.
Remember, even if I don't have anything, even if I don't know what to speak,
और यहां तक कि हमारे पास कुछ भी नहीं होगा उसको देने के लिए, कोई शब्द नहीं होगी या कुछ नहीं होगा,
God will give the words to speak.
लेकिन परमेश्वर हमें वो शब्दों को देगा वहां बोलने के लिए.
My sincere desire just to encourage this brother.
और मेरी जो इच्छा है, गंभीर इच्छा जो है, इस भाई को प्रोत्साहन करना है केवल.
This is how the body of Christ is built.
और इसी प्रकार परमेश्वर की देह बनाई जाती है.
We read in 2 Corinthians chapter 1.
दूसरा कुरिन्थियों का एक अध्याय.
Chapter 1 verse 3 and 4.
उसका वचन 3 और 4.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort.
हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है.
See the very nature of God, the God of all comfort.
और परमेश्वर का स्वभाव यहाँ पे देखिए कि सब प्रकार के शांति का, सांत्वना का परमेश्वर.
And when as we are His children, we can receive a little bit of the God of all comfort. We can receive people who comfort others.
और यहाँ पर हम उसके संतान होने के नाते उसी स्वभाव को हमारे अंदर ले सकते हैं. उसके संतान होने हम औरों को शांति या सांत्वना देने वाले लोग बन सकते हैं.
And in verse 4,
वचन चार,
he who comforts us in all our affliction so that we will be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God.
और वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उसमें उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो.
Remember when we are in our own afflictions,
और जब हम अपने ही क्लेशों में होते हैं,
when we are in pain, we are in trouble,
और जब हम दर्द में होते हैं, तकलीफ में होते हैं,
very often life city we don't know what to do,
और जीवन के हालातों में हमें नहीं पता चलता कि हमको क्या करना है.
It may be like, oh, pray my Lord, my eyes are on you, I don't know what to do.
और हम ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मेरी आंखें तेरी और है, मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे क्या करना चाहिए.
And God always comforts us.
और परमेश्वर हमेशा हमें वहां प्रोत्साहित या सांत्वना देता है.
He never let us down.
कभी हमको नीचे नहीं होने देता.
That is an unchangeable promise of God.
और ये कभी न बदलने वाला परमेश्वर की प्रतिज्ञा ये है.
And why, one reason why God comforts in our struggle, affliction is.
और एक कारण ये है कि क्यों परमेश्वर हमारे क्लेशों के अंदर हमें सांत्वना क्यों देता है, उसका एक कारण है.
We can sometime later we can comfort someone else.
ताकि आगे जाके बढ़कर हम किसी और को सांत्वना दे सके.
Who are in similar turmoil.
और जो वही तकलीफ उन्हीं हालातों से गुजरते हैं.
And waiting for a word of comfort.
और जो एक प्रोत्साहन के एक वचन की वो राह देख रहे हैं.
And we can comfort them because through the comfort we received in our afflictions.
और जो प्रोत्साहन जो सांत्वना हमने हमारे क्लेश और दुखों में लिया उसी सांत्वना को हम औरों को बांट सकते हैं.
I just want to read two things and close.
और दो मैं चीजें बताकर समाप्त करूंगा.
One is in Second Corinthians chapter 8.
दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय.
Paul is talking about giving in this chapter.
और एक बार पॉलुस यहाँ पर इस अध्याय के अंदर देने के बारे में बात करता है.
Again, I want to encourage those who have time and interest, go home and read the Second Corinthians chapter 8 and 9.
और मैं और प्रोत्साहित आपको करूंगा, आपके पास सब घर जाकर समय है, दूसरा कुरिन्थियों 8 और 9 अध्याय को पढ़े.
Both these chapters are on the theme of it is more blessed to give.
और ये दोनों अध्याय है देने के बारे में, कि देने की धन्यता है लेने से बढ़कर, उसके बारे में वो कहता है.
So in the beginning of this chapter, he is speaking about the Macedonian Christians.
और यहाँ पे मकदूनिया के जो विश्वासी है उनसे वो बात कर रहा है.
They are in great deal of affliction, persecution, struggle, utter poverty.
और यहाँ पे बहुत ही गरीबी के साथ बहुत सारे ऐसे क्लेशों में, तकलीफ और संकट में यहाँ के लोग है.
So something is so encouraging, the words which Paul has reserved for them.
और यहाँ पर जो पॉलुस ने उनके लिए जो वचन यहाँ पे रखे वो बहुत ही प्रोत्साहनदायक उनके लिए है.
Chapter 8:1-2. Now, brethren, we wish to make known to you the grace of God which has been given to the churches of Macedonia, that in great deal of affliction, their abundance of joy and their deep poverty overflowed in the wealth of their liberality.
और अबे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकदुनिया की कलिसिया पर पहुंचा, कि क्लेशों की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई.
I testify that according to their ability and even beyond their ability, they gave of their own accord.
और उसके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया.
So one thing which Paul is telling about Macedonian Christians is.
और पॉलुस एक चीज जो मकदुनिया के विश्वासियों के बारे में यहाँ पर वो कहता है.
In fact, they gave themselves to God.
उन्होंने सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर को दे दिया.
As expected, we know that, we all understand, giving yourself to God, surrendering. Yielding yourself to God, we all understand.
और इस बात को हम सब समझते कि अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को देना, अपना आप समर्पण करना.
But he is also, they gave themselves to us.
और यहाँ पे वो लिखा है, उन्होंने हमको भी अपने आप को दे दिया.
They gave themselves to God first.
और पहले तो सबसे पहले उन्होंने अपने आप को परमेश्वर को सौंपा, दे दिया.
As a second part, as a continuation, they gave themselves to the church or brothers and sisters, or they gave themselves to others.
और उसका दूसरा भाग उसके निरंतर में उन्होंने किया कि अपने आप को कलीसिया के भाई बहनों के प्रति उन्होंने अपने आप को दे दिया.
That's a wonderful thing to remember.
और ये बहुत एक अच्छी बात है याद करने के लिए.
Let us not be satisfied by giving ourselves to God.
और केवल परमेश्वर को अपने आप को देने के द्वारा, समर्पण करने के द्वारा हम संतुष्ट न हो जाए.
Let us also learn to give ourselves to others.
आइए हम सीखे कि हम अपने आप को औरों को भी देना सीखें.
That is what Macedonian Christians did.
और यही मकदूनिया के जो मसीह उन्होंने किया.
All the actions it evolved out of it.
और उनके जो सारे कार्य थे इन सारी चीजों से इसी से वो निकलते थे.
Before giving or anything, they gave to God and they gave themselves to others.
और कुछ भी देने या करने से पहले उन्होंने अपने आप को परमेश्वर को दिया और दूसरा उन्होंने अपने आप को लोगों के लिए दे दिया.
So Paul is telling a similar thing in 2 Corinthians chapter 12.
और दूसरा कुरिन्थी 12 के अंदर 15 वचन में पॉलुस उसी प्रकार कहता है.
2 Corinthians 12:15.
दूसरा कुरिन्थी 12:15.
I am glad to give you myself and all I have to your spiritual good.
और मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा.
Meaning I am willing to give myself to you.
और इसका मतलब है कि मैं अपनी इच्छा से अपने आप को तुम्हें देता हूँ.
Not only that, I am willing to spend for you.
और यहाँ से वो कहता है कि मैं अपने आप को आपके लिए खर्च भी कर दूंगा.
In NASB reads that I will most gladly be spent and be expended for your souls.
और NASB अनुवाद में लिखा है कि बहुत ही आनंद के साथ मैं आपके लिए पूरी तरह से बलिदान या खर्च हो जाऊंगा आपके लिए मैं.
As we are at the end of this year and the beginning of a new year.
और जैसे हम इस साल के अंत भाग है और बहुत ही जल्दी हम नए साल में प्रवेश करेंगे.
May God really help us to be fruitful Christians.
और परमेश्वर हमारी सच में सहायता करे ताकि हम एक फलदायी मसीह बन सके.
People who are a blessing and comfort to others.
और ऐसे लोग जो औरों के लिए एक आशीष और एक प्रोत्साहन का कारण बन सके.
Very often it may not be material blessing that others are looking for.
और बहुत बार लोग जो है बहुत ही कोई मटीरियल या दिखने वाले आशीषों की अपेक्षा नहीं करते आपसे.
It may not be money or goods.
और वो पैसा या धन या कोई चीजें नहीं अपेक्षा करते.
It may be a word of encouragement.
लेकिन लोग आप एक प्रोत्साहन के वचन की अपेक्षा आपसे करते हैं.
Correctly spoken at the need of the moment.
और जो उनकी जरूरत है उसी समय पर एक सही शब्द जब बोला जाए प्रोत्साहन का.
It will be like a golden apple presented on a silver platter.
और जैसे एक सोने का जो एप्पल जो है उनको एक चांदी की थाली के अंदर उनके सामने जरूरत के समय दे दिया.
And there's a continued desire and pray, Lord, grant me the gift of prophecy.
और इसलिए हम परमेश्वर से निरंतर मांगे कि परमेश्वर मुझे एक भविष्यवाणी करने का वरदान तू दे.
So that through my little words, I speak on phone or normal conversation, I can bless others.
और ताकि प्रभु जब मैं लोगों से बात करूं या फोन पर बात करूं किसी भी रीति से मेरे स्वाभाविक वार्तालाप से मैं लोगों को आशीष दे सकूं.
Words of encouragement, exhortation, and comfort.
और ताकि मैं लोगों को प्रोत्साहन सांत्वना देने वाले वचनों से मैं उनको लोगों को प्रोत्साहित कर सकूं.
May God bless us.
प्रभु हमें आशीष दे.
Thank God for the words we heard today. परमेश्वर को धन्यवाद दें जो वचन हमने आज सुना. वी नेचुरली एज वी हर्ड टुडे वी नेचुरली वी हैव एटीट्यूड ऑफ बीइंग सेल्फिश.
और हमारे अंदर एक ऐसा स्वभाव है कि सेल्फिश का स्वभाव एक स्वार्थी मन का.
वी ऑलवेज थिंक अबाउट आवरसेल्फ्स फर्स्ट एवरीवेयर.
हम अपने बारे में ही सोचते हैं हर एक जगह में.
लाइक व्हेन वी आर बोर्न It goes on increasing as like it more and more we can see that selfishness coming in us.
और जैसे हमारा जन्म हुआ और वहाँ से लेकर के हम देखते जैसे हम बढ़ते जाते हैं और बढ़ता जाता है.
We always want from others, want, I want something.
और हमेशा ऐसा एक चाहत रहे कि मुझे दूसरे से और चाहिए और चाहिए, दूसरे से हम लोग चाहते हैं.
And a person who is the most selfish is the person who is not bothered about others.
और एक जो व्यक्ति इतना स्वार्थी है कि वो दूसरे के बारे में सोचता नहीं, उस दूसरे के बारे में उसको चिंता नहीं रहता.
He is only, his full mind is occupied with what I can get from others, honor, whatever I can get from others. That's the only thing that is in his mind.
और उसका पूरा मन जो ऐसा विचलित रहता है कि वो कि दूसरे से क्या वो पा सकता है, क्या मिल सकता है उसको दूसरे से.
Our flesh always wants that and devil also wants to create situations where we always think about ourselves.
और हमारा जो शरीर है वो ही चीज को चाहता है और शैतान भी यही चीज को अनुमति देता और जगाता और बढ़ाता है हमारे जीवन में.
एंड दैट्स व्हाई ही व्हेन वी आर सिंगल वी हैव लॉट ऑफ सेल्फिशनेस.
और जब अकेले रहते हैं हमारे बहुत स्वार्थिक मन है, स्वार्थिकता हमारे अंदर बना रहता है.
एंड व्हेन वी आर ब्लाइंड अबाउट दैट वी डोंट नो व्हाट हाउ मच सेल्फिश वी आर.
और जब हम इस बात के ऊपर अंधे हो जाते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि हम कितना स्वार्थी बनते हैं, कैसे हमारा स्वभाव रहता है.
एंड देन गॉड गिव्स अस अ पार्टनर वाइफ.
और फिर परमेश्वर हमें एक सहयोग्य पत्नी हमारे लिए देता है.
एंड देन इफ यू ऑनेस्ट वी विल नो हाउ मच वी कैन come to know, discover the amount of selfishness we have.
और उनके द्वारा हम जान सकते हैं कि कितना हमारे अंदर वो स्वार्थिक मन है.
Till that time we think we are good, but when we really know how much selfish that when they show us through our lives.
और उस समय तक हमें लगता है कि हम अच्छे हैं, लेकिन जब वो बताते हैं हमारे जीवन के द्वारा हम कितना स्वार्थी हैं.
When we read about Joseph, when he many times it is written God was with him.
और हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं कि काफी बार ऐसा लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ था.
That is why he had that attitude that means that he knew that God had allowed all everything in his life.
उसके अंदर ऐसा एक ये स्वभाव था कि परमेश्वर ने अनुमति दिया है उसके जीवन में.
If I am not sure that God has allowed these things in my life, I cannot encourage someone else.
और अगर परमेश्वर ने इस चीज को अनुमति नहीं दिया, मैं दूसरों को उत्साहित कैसा कर सकता हूँ?
It is only through what God gives me that I can encourage someone else.
और जो परमेश्वर मुझे देता है, उसी के द्वारा मैं दूसरों को उत्साहित कर सकता हूँ.
Imagine Jesus, he was God himself, but when he came down, he became like us, and he had to hear every day from the Father.
और देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जब इस पृथ्वी में आया वो परमेश्वर होकर के, लेकिन एक हमारे जैसा एक जीवन उसने जिया और हमेशा वो पिता से वो सुनता था.
As we heard, morning by morning he was listening to God.
और हम देखते हैं कि हर एक सुबह सवेरे वो परमेश्वर का वाणी को सुनता था.
That is why it's written below that he gave his back to those who strike him, he didn't open his mouth.
और इसलिए हम देखते हैं कि जब लोगों ने उसे मारा, उनको वापिस कुछ बोला नहीं, चुपचाप रहा.
And sometimes keeping a mouth shut will encourage someone else.
और कभी कभी ऐसा होता है जब हम अपने आप को चुप रखते हैं, दूसरों को भी उत्साहित करता है.
Sometimes God tells me to keep my mouth shut and that will help that other person.
और जब परमेश्वर बोलता है मेरा मुंह को चुप रखने के लिए, वो दूसरे व्यक्ति को उत्साहित करता है, उसका सहायता भी होता है.
If I speak, it will create a more, it will discourage and it will create a more problem in that situation.
और अगर मैं उसके ऊपर ज्यादा बातचीत करता हूँ तो और कुछ उलझन शुरुआत हो जाता है और कुछ समस्या आगे खड़ा हो जाएगा.
We see Jesus also in the Gospels. Sometimes he speaks, sometimes he keeps quiet. It's not some mathematical formula, but he was listening to the Father.
और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में कभी कभी वो बोलता था, कभी कभी वो चुप रहता था. ये सिर्फ वो परमेश्वर का जो 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 वाणी था, योजना था, उसको वो ठीक से पालन करता था.
So that is what I need to learn, how to listen constantly and when to speak, what to speak.
और यही चीज को मुझे सीखना है लगातार कि कब मुझे बोलना है और कब मुझे चुप रहना है.
And it is not only speaking the words of the like philosophical words, but more than that, I need to know the words of the word of God. That is the one thing that will strengthen someone else.
और ऐसे बातों को बातचीत नहीं करना, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उस चीज का जानकारी मुझे ज्यादा होना जरूरी
है. Because in the world also there are people who encourage, but their encouragement is only limited to those. Wisdom of the world. It is not written anything of the word of God.
और हम देखते हैं संसार में काफी कुछ ज्ञान है, और लेकिन वो जो ज्ञान है सिर्फ संसार तक ही है, लेकिन परमेश्वर के साथ कुछ नहीं, मेल मिलाव नहीं है उसके साथ.
We desire the spiritual edification of others. Spiritual, not just soul. Keeping ourselves on the soul, but that others are spiritually edified through our lives.
और हमारा जो है सिर्फ आत्मिक उन्नति में ही नहीं बनना है, लेकिन दूसरों को भी उत्साहित करने का वैसे एक भावना और वैसे एक चीज हमारे अंदर होना जरूरी है.
Because whatever the world gives us, all the encouragement, it is only or it will just prop us up in our soul. It will not help us in our spirits.
और जो संसार देता है वो सिर्फ हमें ऐसा ही हृदय के अंदर ही वो खुशी लाएगा, लेकिन हमारे आत्मा में कोई बढ़ोतरी नहीं देगा.
That is why I really, I also, as brother said, as Paul also said, that we desire, long for that spiritual gift. That spiritual gift is very important.
और जैसे कि भाई ने बताया और पौलुस भी यही बात को कहता है कि उस आत्मिक बातों की खोज करो, आत्मिक विषयों की खोज करो.
And then I have a concern for others, like I don't think about myself. I look at others and I see a concern, a need for them, a need for in their lives, and I have concern about them.
और मैं अपने बारे में नहीं सोचना है, मुझे दूसरों के बारे में सोचना है, उनके चीजों के बारे में, उनके उनका जरूरत के बारे में मुझे सोचना है. उस तरीके का एक मन भावना मुझे बनाना है.
I really need, desire this what Jesus in the Isaiah 50 what we read. I really desire that in my life.
Isaiah ke 50 mein jaise padhte hain, us tarike ka ek bhavana main chahta hu.
And a longing to be an encouragement, not showing anyone else, but secretly in some small, maybe one sentence, to help others.
लेकिन ये दिखावा जैसा नहीं है, लेकिन एक छोटी तरीके से दूसरों को एक उत्साहित करने के लिए, मदद करने के लिए वैसा एक भावना.
Not a single soul is seeing what I'm doing, but I want to encourage Lord. Just one person I want to encourage.
और कोई मुझे देखता नहीं है, लेकिन ऐसा एक समय में एक एक व्यक्ति को मैं सहायता कर सकूं.
When I speak on the phone, what I'm speaking, am I trying to encourage with one word?
और जैसे मैं फोन के ऊपर बात करता हूँ, क्या मैं उत्साहित करने वाला बात कर रहा हूँ या किस तरीके से मैं
और am I going on chatting and gossiping and speaking so many things unnecessary with my mouth?
और क्या मैं लगातार कुछ ऐसे नहीं बात करने की, ऐसी बातों से मैं चीजों को ऐसा ही समय को बर्बाद कर रहा हूँ क्या?
I can speak one word that will encourage that person some way or the other.
एक एक शब्द जिससे वो व्यक्ति को मैं उत्साहित कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ.
Only way is to be constantly listening what God is telling me, and that only I can speak, and that will encourage.
और वो एक ही तरीका है कि मैं परमेश्वर को सुनूं और परमेश्वर क्या कहता है उस बातों को मैं बोलूं.
I've heard brother Zach saying one thing that there is a place in the back that we cannot touch. Like we try to, if we are feeling itching in the center of our back, we can't itch ourselves.
और भाई जैक ऐसा बता रहा था कि पीठ के पीछे एक ऐसे जगह जहाँ पे हमारे हाथ पहुँचता नहीं, अगर कुछली भी होता है तो हाथ पहुँचता नहीं है.
सो देन समवन एल्स हैज टू जस्ट scratch that area, I can't touch.
और वहाँ पे अगर कुछली होता है तो किसी और को बोलना पड़ता है कि कुजाने के लिए.
So we need to be people who are ready to scratch others back to help them when they need it.
और हम दूसरों का पीठ को खुजाने के लिए तैयार होना है जब उनको जरूरत है तभी.
But not going and scratching everybody.
But और इसका मतलब यही नहीं कि हमेशा जाके दूसरों को दूसरे के पीठ के पूजे कुजाते रहे.
As they see that I am a person who is who can scratch very well, then I go and scratch them.
ऐसा ना.
We should not go on scratching everyone, but we should as per the need, as God, as that person comes to us for help, that time we should help them.
जब जरूरत है तभी हम सहायता करें. इसका मतलब लगातार हम जब नहीं है उस समय हम चीजों को नहीं करें.
When that person comes for help, that time I go and help, not go on giving advice to 100 people.
जब सहायता की जरूरत हो तभी जाकर के हम सहायता करें.
There's a need to take up my cross where I need to keep quiet, where I should not speak that point. Some places I should not speak.
और मुझे उस समय को क्रूस को लेना है जब मुझे बोलना नहीं है, उस समय को मैं अपने आप को चुप रखना, मुझे अपने आप को चुप रखना है.
If I go on speaking everywhere, I'll be a nuisance. Everyone will run away.
और जब भी मैं बोलते जाऊंगा वो एकदम एक अलग तरीके का एक ये हो जाएगा.
Only to speak at the right moment when God wants me to speak, right that time.
और उसी समय मुझे बोलना है जब परमेश्वर मुझे चाहता है बोलने के लिए उस समय.
We need a lot of wisdom for that. Many times we just blabber something.
और उसके लिए बहुत ज्ञान की जरूरत, क्योंकि हम काफी बार फालतू बातें करते रहते हैं.
May God help us.
परमेश्वर हमारी सहायता करें. This is an open time. ये एक सबके लिए समय है. और मैं ये चाहता हूँ, जैसे भाई ने बताया, एज ब्रदर अबू सेड, वन मिनट कैन एनकरेज अ पर्सन सिटिंग हियर. एक मिनट अगर हम बोलेंगे, एक व्यक्ति को उत्साहित करने की बात हो सकता है. तो समथिंग विच गॉड हैज रियली पुट इन आवर हार्ट्स, जो परमेश्वर ने सचमुच में आपके हृदय में डाला है, कम विद दैट. बट वन मिनट, मेक श्योर डोंट गो टू लेंथी सो दैट अदर्स ऑल्सो कैन गेट द टाइम. एंड सिमिलरली डोंट वेस्ट द टाइम, समय को बर्बाद भी ना करें. बट एक शब्द से जिससे वी आर एनकरेज. देर आर पीपल सिटिंग हुआ विथ लॉट्स ऑफ बर्डन, एंड विथ दैट वर्ड विच गॉड हैज पुट इन योर हार्ट, डोंट कीप इट क्वाइट. गॉड हैज पुट मीन्स इट विल एनकरेज समवन. प्लीज डोंट वेस्ट टाइम.
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. जब प्रोत्साहन करनी बात आती है तो मैं सोचता हूँ कि बहुत मुख्य बात जो मेरे जीवन में मैं सोचता हूँ कि किसी को प्रोत्साहित करने से पहले उसके लिए तरस होना बहुत जरूरी है, एक कंपैशन होना बहुत जरूरी है. हम वचन में पढ़ते हैं, जब संडे स्कूल से पढ़ते हैं, कि सबसे छोटा वचन है जीसस वेप्ट, यीशु मसीह रोया. पर उसके पीछे जो अर्थ है, जो कितना कंपैशन से भरा था, जब लोगों को दर्द में वो देखता था, वो कंपैशन से भर जाता था. जब 5,000 की लोग भी भीड़ थी वहां पे, तब भी यीशु मसीह उनके बारे में सोचते, इनकी रोटी कौन देगा. तो अगर मुझे प्रोत्साहन का पुत्र बनना है तो सबसे पहले मुझे उस सच्ची तरस से भरना बहुत जरूरी है. बिना तरस के मैं किसी को प्रोत्साहन नहीं दे सकता. यीशु मसीह के पास हमेशा वो उदाहरण था कि वो हमेशा तरस से भरकर लोगों को चंगाई देता था, उनकी सहायता कर सकता था. कई बार वो तरस मेरे अंदर नहीं होगी तो मेरा प्रोत्साहन केवल ज्ञान का होगा. दूसरी चीज जो मैं देखता हूं अपने जीवन में, एक टेम्पटेशन को देखता हूं कि मैंने जो सीखा है वो किसी की परिस्थिति में उसको पूरी तरह से उसको ऊपर उंडेल देना कि मैंने सीख लिया है, अभी मैं तेरे को सब कुछ बताता हूँ अभी, क्योंकि मैं मुझे सब आता है आत्मिक रीति से, तो वो बहुत बड़ा एक धोखा कई बार बन जाता है, क्योंकि उसकी शायद वो जरूरत उस समय नहीं है। और उस समय मैंने इस बात को मैंने जाना है कि उस समय उस व्यक्ति को सुनना बहुत जरूरी है, वो भी एक प्रोत्साहन देने का एक पार्ट है कि मैं बोलूं नहीं वहां पे, लेकिन उसको मैं ध्यान से सुनूं, उसकी तकलीफ को, उसके समस्या को, और उसको पूरी तरह से सुनता रहूं, उससे भी उसको प्रोत्साहन मिलेगा उसको सुनने से, ना कि मैं बोलता रहूं कि मैंने सीख लिया है प्रभु के वचन से। ये टेम्पटेशन हमारे अंदर होता है कि जब कोई गलत या ऐसी तकलीफ से गुजरता है कि मैं वचन से उसको क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं, और हल्का सा वो एक टेम्पटेशन होता है कि मैं उससे बढ़कर हूं, या मैं जानता हूं इस बात में तुझे चिंता करने की जरूरत है, मैं उसको कुछ सिखाने की प्रोत्साहन करने की, लेकिन मेरे हृदय के अंदर तरस नहीं है, सुनने की भावना मेरे अंदर उस व्यक्ति के लिए नहीं है। तो मैं चाहता हूं मेरे जीवन में व्यक्तिगत रूप से कि उस और भी ज्यादा तरस से मैं जब कभी लोगों को मैं देखूं उनकी तकलीफों को, तो केवल उनको बोलने के लिए मैं तुमको प्रार्थना बहुत आसानी से मैं बोल देता हूं आई विल प्रे फॉर यू, लेकिन एक आत्मिक एक घमंड से भरकर कई बार बोल दे मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना, लेकिन सच में कई बार मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करता, लेकिन उनके सामने अच्छा दिखाने के लिए आई विल प्रे फॉर यू प्रभु सब कुछ अच्छा करेगा, लेकिन तरस नहीं है। मैं चाहता हूं जेन्युइनली मैं जब किसी को बोलूं कि आई विल प्रे फॉर यू, तो मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में जाके उनके लिए प्रार्थना करूं परमेश्वर के सामने तरस से भरकर। और तीसरी बात कि मैं किसी को दिखाने के लिए प्रोत्साहन न करूं। और अंत में मुझे इसकी बात याद आती है यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले की, वो जो कहता है कि अवश्य है कि मैं घटूं और तू बढ़े, और तभी हम औरों को प्रोत्साहन दे सकते हैं जब हमारे अंदर ये भावना निरंतर आती रहेगी कि प्रभु मैं और घटना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि तू बढ़े प्रभु, तब हम औरों को और अच्छे से प्रोत्साहन कर पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा कि निरंतर मुझे अपने आप का इनकार करना है, प्रतिदिन मेरे अपने आप के लिए मुझे मरते जाना है ताकि मैं औरों को मुझसे अधिक अच्छा देखूं। फिलिप्पियों में लिखा है कि औरों को खुद से बेहतर जानो तभी मैं औरों को प्रोत्साहन करूंगा। जब मैं अपनी नजरों में बहुत बड़ा व्यक्ति हूं या बहुत कुछ अपने बारे में सोचता हूं, प्रोत्साहन मेरा खोखला होगा। मैं चाहता हूं इन क्षेत्रों के अंदर मैं बढ़ना चाहता हूं इस नए साल के अंदर, कि सबसे पहले तरस से भरकर है और दूसरी चीज के लोगों को सुनना चाहता हूं, और ये भावना के साथ कि प्रभु मैं घटता रहूं और तू बढ़े, उस भावना से मैं प्रभु लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं।
इन गैलेशियंस 6:1 इट सेज, ब्रदरन इफ एनीवन is caught in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, each one looking to yourself, so that you too will not be tempted.
ये अपने अपने बाइबल में पढ़ सकते हैं जो लिखा गया है गलतियों का 6:1 में।
So whenever I was thinking that the spirit which I have is very important when I seek to encourage people.
और जो आत्मा मेरे अंदर है वो बहुत ही जरूरत है, किस तरीके से मैं दूसरों को उत्साहित करता हूँ।
I need to have a spirit of gentleness.
और मेरे अंदर वो नम्र आत्मा की जरूरत है।
So if somebody is fallen into sin.
और जो पाप में गिरा हुआ है, कोई भी व्यक्ति पाप में गिरता है,
I can approach that person in a spirit where I say that I have never fallen, see such a pure person I am. If I'm approaching that spirit, I will not be an encouragement to that person.
अगर मैं जाता हूँ उस व्यक्ति के पास और बोलता हूँ मैं ये सोच के कि मैं कभी पाप में गिरा नहीं, उस तरीके की भावना से उसको उठाने के लिए, तो वो सही नहीं होगा।
I cannot encourage that person.
और मैं उसको उत्साहित नहीं कर सकता हूँ।
Here it says that I have to approach in the spirit of gentleness.
और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि मुझे अगर उसको उत्साहित करना है, एक नम्रता के साथ जाना है।
That I have a spirit that I can also fall in the same sin that he has fallen.
और एक ऐसी भावना के साथ कि जैसा वो गिरा है मैं भी गिर सकता हूँ।
I can fall, I can be tempted, and if I do not have that spirit, I cannot lift others up.
और मेरे अंदर वो आत्मा नहीं है, मैं दूसरों को उत्साहित नहीं कर सकता हूँ।
In Philippians chapter 2,
फिलिपियों का दूसरा अध्याय,
verse 1 and 2, it says, therefore, if there is any encouragement in Christ, if there is any consolation of love, if there is any fellowship of the Spirit, if any affection and compassion, make my joy complete by being of the same mind, maintaining the same love, united in spirit, intent on one purpose.
उसका एक और दोहा हम पढ़ सकते हैं हिंदी में।
So the my heart, if it's not in fellowship, if it's not in love with all people, I cannot have a spirit heart of encouraging people.
और मेरा अगर हृदय उस सहभागिता में नहीं है सबके साथ और सब लोगों के साथ उत्साहित करने का, तो उस तरीके से मैं किसी को उत्साहित नहीं कर सकता।
If in my spirit there is some bitterness or some unforgiving attitude, I need to cleanse myself before I come to meet people.
और मेरे अंदर वो कड़वापन है और मैं किसी को क्षमा नहीं कर सकता हूँ, वैसा एक आत्मा अगर मेरे अंदर है तो उस चीज से मुझे साफ करना है, साफ होना जरूरी।
Paul says in 2 Corinthians chapter 2,
और दूसरा कुरिन्थियों में पौलुस कहता है दूसरा अध्याय में,
not chapter 2, I think some other verse, he says that when he found Titus,
और जब उसने टाइटस को देखा,
he was really encouraged,
और वो बहुत ही उत्साहित पाया।
Chapter 7 verse 6,
उसका सात का छह में पढ़ सकते हैं।
But God who comforts the depressed comforted us by the coming of Titus.
और जो परमेश्वर ने हमें संभाला है, आराम दिया है, वो टाइटस के आने से सबको आराम मिला।
So Titus did not preach a big message or do anything. He just came and Paul was encouraged there.
और वहाँ पे देखते हैं कि टाइटस ने कोई बड़ा प्रचार नहीं किया, उसके आने से सबको बहुत एक आराम मिला, एक अच्छा एक उत्साह उत्तेजना मिला।
If I'm filled with the Holy Spirit,
जब मैं पवित्र आत्मा से भर जाता हूँ,
If I'm living in fellowship with God,
जब मैं परमेश्वर के सहभागिता में बने रहता हूँ,
If I have the joy of God in my heart,
और मेरे अंदर वो परमेश्वर का आनंद बना रहता है,
I can just meet people, I can smile at them, I can just talk to them, even without my talking, even my presence will be an encouragement.
और मैं लोगों को मिल सकता हूँ, और सिर्फ मेरा उधर उपस्थित रहने से लोगों के अंदर वो आनंद भर जाता है।
In Ephesians chapter 4,
एफिशियों का चौथा अध्याय,
Ephesians chapter 5, it says in verse 19,
Ephesians का 5 का 19,
19
पढ़ सकते हैं, Ephesians का 5 का 19,
speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord and giving thanks for, so that is the spirit, the Holy Spirit's power which is working in us, that we are always rejoicing and filled with joy.
अब यहाँ पे देखते हैं कि इस तरीके से भजन संहिता से बात करना और गीतों को गाना, उत्साहित एक दूसरे को उत्साहित हम करते हैं। परमेश्वर इन वचनों को आशीष दे।
I was really encouraged last our journey. God was really reminding me that he is a prayer answering God.
और पिछली जो हम यात्रा कर रहे थे, परमेश्वर ने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया, परमेश्वर ने स्मरण दिलाया कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है।
Sometimes we may not see the result, but it delays, but he will do it in his own time.
और कई बार हम उत्तर को नहीं देख पाते, लेकिन परमेश्वर उस चीजों को अपने समय में जरूर करता है।
Something which really encouraged me that I am valuable before God.
और कई बार इससे बहुत प्रोत्साहन मुझको मिलता है कि मैं परमेश्वर के सामने बहुत ही मूल्यवान हूँ।
From Luke 12 6 and 7.
लूका 12 अध्याय 6 और 7 वचन।
Are not 5 sparrows sold for 2 cents? Yet not one of them is forgotten before God.
और क्या 2 पैसों की 5 गोरिया नहीं बिकती तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता।
So in 2 cents 5 sparrows are sold.
यहाँ पे लिखा है 2 पैसों की 5 गोरिया, मतलब
so such a no value even in the world, that sparrow has no value even, and so 5 sparrows we get in 2 cents.
और यहाँ पे मतलब ये जो चिड़ियों के बारे में लिखा है, 5 चिड़िया जैसे 2 पैसों के अंदर उनका कोई मूल्य नहीं, ऐसे यहाँ पर वो लिखे गए हैं।
Even one of them is not forgotten before God.
और यहाँ पर उनका कीमत भी नहीं, लेकिन उनमें से एक भी परमेश्वर उनको नहीं भूलता है।
That God cares for such no value in before people in the world, but still God cares for such sparrows.
और परमेश्वर ऐसी जो चिड़िया है जो संसार के सामने उनका कोई भी मूल्य नहीं, ऐसी चिड़ियों को भी चिंता वो करता है।
And 7, indeed the very hairs of your head are all numbered.
और तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं।
Do not fear.
इसलिए डरो मत।
You are more valuable than many sparrows.
और तुम इन बहुत सारे चिड़ियों से बढ़कर मूल्यवान हो।
So I no need to fear because I am more valuable than many sparrows.
और मुझे डरने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि बहुत सारी चिड़ियों से मैं अधिक मूल्यवान परमेश्वर के लिए हूँ।
One sparrow God is not forgetting, but I am more valuable than many sparrows. So God is always thinking about me and caring for me.
और परमेश्वर यहाँ पे जैसे कहता है कि वो एक उस चिड़िया को भूलता नहीं, लेकिन उन सबसे बढ़कर परमेश्वर मेरे बारे में सोचता है, मैं उसके लिए मूल्यवान हूँ, वो मेरे बारे में निरंतर सोचते रहता है।
I need not fear for anything which I am facing today, the problems and the pains I am going through. I no need to fear because God is remembering me every time.
और जिस भी समस्याओं का हालात का मैं सामना करता हूँ, जिस भी दर्द से मैं गुजरती हूँ, किसी भी चीज से मुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर निरंतर मुझे स्मरण करते रहता है।
For me.
वो मेरी चिंता करता है।
In verse 24,
उसके 24 वचन में,
Consider the ravens, for they neither sow nor reap, they have no store room for no barn, and yet God feeds them.
और कौओं पर ध्यान दो, न वो बोते हैं, न काटते, न उनके भंडार, न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है।
These ravens have no store house, no store room.
और यहाँ पे लिखा है जो कौवे होते हैं उनका कोई खत्ता या ऐसी कोई जहाँ अनाज भरने का स्थान उनके लिए नहीं होता है।
Still God feeds them.
लेकिन फिर भी परमेश्वर उनका पालन पोषण करता है।
Every day God is feeding them.
प्रतिदिन परमेश्वर उनका पालन पोषण को खिलाता है।
Then how much more valuable you are than the birds.
और तुम्हारा मूल्य उन पक्षियों से कहीं अधिक बढ़कर है।
So I have to really in my heart, deep in my heart, that love of God, that care of God, that I am more valuable than these birds. So He cares for me.
और मेरे हृदय की गहराई के अंदर ये होना चाहिए कि परमेश्वर मेरा जो मूल्य है इन सारे जो पक्षियों से बढ़कर परमेश्वर मेरा मूल्य अधिक करता है, मेरी चिंता करता है।
So I no need to fear, I no need to worry about anything I am facing today.
और जो किसी समस्या या चीजों का सामना मैं आज कर रही हूँ उससे किसी से भी मुझे करने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है।
God was really encouraging me that the result of the many things I am looking forward, I am hoping, but still not I not received it, but He will do it.
और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनकी मैं आशा कर रही हूँ प्रार्थना के अंदर, लेकिन मैंने उसको शायद प्राप्त नहीं किया है।
Because I am more valuable than these birds.
लेकिन इन सारी चीजों से बढ़कर मैं परमेश्वर के सामने, इन पक्षियों से बढ़कर मैं मूल्यवान हूँ।
Good morning, brothers. I want to talk about the will of God.
और मैं परमेश्वर की इच्छा के बारे में बांटना चाहता हूँ।
When I was a little kid, my dad always used to ask me, Samuel, did you read your Bible?
और जब मैं छोटा था, मेरे पिता मुझे हमेशा पूछते थे, Samuel, क्या तुमने अपना Bible पढ़ा?
I never used to sincerely read my Bible when I was young.
और जब मैं छोटा था, मैं कभी भी गंभीरता से अपने Bible को नहीं पढ़ता था।
So my dad always used to tell me, listen. Word of God is like a two-edged sword. Huh? Remember this.
और जो मेरे पिता कहते थे कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार के समान है।
And it was just one week or two weeks before I heard a conference meeting in Hyderabad.
और एक या दो सप्ताह पहले हैदराबाद में जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसको जब मैंने सुना।
And I thought for 10 years I was completely blind.
और मैंने सोचा कि 10 साल तक मैं पूरी तरह से एक अंधा व्यक्ति था।
Because I did not know what word of God is a two-edged sword means.
और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि दोधारी तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसका क्या मतलब होता है।
Because in my old church also they used to just say it so that people get fear and start reading Bible.
और मेरे पुराने चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर इस तरह से इस वचन को बोलता था ताकि दोधारी तलवार सुनकर लोग उसका भय माने और फिर उस भय के द्वारा वचन पढ़ना शुरुआत कर दे।
Encouraging people is very good.
और लोगों को प्रोत्साहन देना बहुत अच्छी बात है।
But sometimes doing good may hinder God's work.
और कई बार हो सकता है कि हमारा जो भला करना परमेश्वर की योजना को उसमें बाधा डाल सकता है।
So we need to understand His will.
और उसकी इच्छा को समझना बहुत जरूरी है।
Now why do I say you are hindering God's work by encouraging people?
और लोगों को प्रोत्साहन देने से कैसे आप परमेश्वर की योजना या इच्छा में बाधा डाल सकते हैं? मैं क्यों ऐसा कहता हूँ?
Let me give you an example.
और एक उदाहरण को मैं दूंगा।
Let's say I time travel to that time at that exact moment when Peter was about to deny Jesus 3 times.
और जहाँ पर पत्रस जो है वहीं पर जहाँ पर हम चलते हैं जहाँ पत्रस यीशु मसीह का इनकार करने वाला था।
So what would I as a CFC member do to him?
और एक CFC member होने की मतलब मैं उनको क्या कहूंगा, क्या करूंगा वहां?
Somehow I know Jesus, Peter is going to deny Jesus 3 times. Somehow I know this.
और मुझे कहीं ना किसी तरह से पता चला था कि पत्रस इनकार करेगा 3 बार यीशु मसीह का।
I would first pray to God for Peter.
और पहले मैं ये पत्रस यीशु से परमेश्वर से प्रेम करूंगा, प्रार्थना करूंगा पत्रस के लिए।
And let's say he's brother Peter. I would say, brother Peter, why are you denying Jesus?
और मैं भाई से कहूंगा कि भाई पत्रस तुम क्यों यीशु मसीह का इनकार कर रहे हो?
Jesus must have also prayed to God. Because Jesus also knew he is going to deny me.
और यीशु मसीह ने भी वहाँ पे यीशु मसीह को भी पता था कि वो मेरा इनकार करेगा.
But the concern or the encouragement that I had for Peter.
और जो concern मेरा या मेरा जो चिंता या प्रोत्साहन पत्रस के लिए था.
That is soulish love.
और वो एक शरीर से भरा हुआ या शरीर का जो एक प्रेम जो था.
God wanted Jesus to be denied by Peter.
और परमेश्वर चाहता था कि पत्रस यीशु मसीह का इनकार करे.
एंड गॉड सेड जीसस दैट आफ्टर ही डिनाइज यू आफ्टर ही हैज फॉलन.
और जब वहां पर लिखा कहा गया कि जब वो वहां पे गिरता है इनकार करता है यीशु मसीह का.
देन प्रे फॉर हिम सो दैट ही डजंट गेट डिस्करेज्ड एंड ही स्टिल नोज दैट आई लव हिम.
और उसके बाद उसके लिए प्रार्थना करे और उसको वो प्रोत्साहन करे ताकि वो जान सके मैं उससे प्रेम करता
हूं. एंड दैट इज व्हाट आई से इज स्पिरिचुअल लव.
और वही एक आत्मिक प्रेम.
How did Jesus know this?
और यीशु मसीह को ये कैसे पता चला?
It is because he allowed that sword which is like a two-edged sword to pierce his life so that he gets a differentiation between spiritual love and what is soulish love.
और ये यीशु मसीह ने अपने आत्मा और जो 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 प्राण है उसके अंदर उस दोधारी तलवार को अनुमति दिया ताकि वो अंतर को जान सके आत्मिक क्या है और शारीरिक क्या है.
This is how you can hinder God's work by doing something good. Encouraging Peter was not something bad.
और पत्रस को प्रोत्साहित करना कुछ गलत बात नहीं थी लेकिन वहां पर हम कुछ ऐसा करके जो शारीरिक है उससे हम परमेश्वर की योजना में अंत बाधा ला सकते हैं.
I thank God for for showing me this revelation.
और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं इस प्रकाशन को मेरे ऊपर देने के लिए.
I want to encourage every brother and sister to keep denying yourself will.
और कभी मैं लोगों को प्रोत्साहित करते जाना चाहता हूं कि अपनी खुद की इच्छा का वो इनकार निरंतर करते रहे.
That is what Jesus also did.
और यही यीशु मसीह ने भी किया.
Now like Paul and Jacob, I'm sorry, they got diseases, God gave them diseases to make them humble.
और याकूब है या पौलुस है उनको परमेश्वर ने बीमारी को दिया ताकि उनको नम्र वो कर सके.
Paul had a thorn in his flesh and Jacob had a broken hip.
और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों के अंदर कुछ न कुछ बीमारियां थी.
Why?
क्यों?
Because God wanted them to be humble, because he did not want to lose fellowship even for one second with them.
और यहाँ पर वो चाहता था कि वो परमेश्वर के सामने निरंतर बने रहे, वो परमेश्वर के साथ एक मिनट की संगति भी वहाँ पर खोए नहीं इसलिए.
So does that mean that God did not love Jesus?
और इसका मतलब क्या होता है कि परमेश्वर यीशु से प्रेम नहीं करता था?
Jesus did not require any disease from God to become humble.
और यीशु मसीह को कोई बीमारी की जरूरत नहीं थी ताकि उसको नम्र किया जाए परमेश्वर द्वारा.
He was such a radical person, he did not require any disease to be humble.
और वो इतना उग्र व्यक्ति था यीशु मसीह की तो उसको कोई बीमारी की जरूरत नहीं थी उसे नम्र करने के लिए.
I pray to God, I look only to Jesus, not left, not right, only to Jesus.
और मैं केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि केवल मैं यीशु की ओर देखता रहूँ न दाएं न बाएं.
I thank you for accepting me in CFC Church. I am so thankful to be in this fellowship.
और इस कलीसिया में मुझे ग्रहण करने के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ.
I pray to God that God uses every brother and sister here as a useful vessel for Him.
और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हर व्यक्ति का परमेश्वर उपयोग करे.
Just one word I want to share about.
और एक वचन को मैं बांटना चाहता हूँ उसके बाद हम समाप्त करेंगे.
All of us shared encouraging one another and one word can encourage.
और जैसे हमने से यहाँ पे बांटा बहुत सोने की हमें प्रोत्साहित करना एक दूसरे को एक वचन किसी को प्रोत्साहित कर सकता है.
Isaiah 58 verse 12. I would take it as a promise to myself and which I am working on this where I could help in really making this verse come true in my life.
और यशायाह 58:12 के अंदर जो है परमेश्वर के वायदे को मैं अपने जीवन के लेना चाहता हूँ ताकि मैं औरों को प्रोत्साहित कर सो. 58 यशायाह उसका 12 वचन.
Because to help others you need that heart of helping which and that cannot come and I cannot create it myself.
और किसी को सहायता मदद करने का हृदय मैं अपने आप से नहीं बना सकता उसको.
As brother spoke about selfishness being selfish with that heart I cannot do that.
और जैसे भाई ने यहाँ पर बताया कि स्वार्थी हृदय हमारा होता है उसके साथ हम औरों की सहायता नहीं कर सकते.
John the Baptist he was so lowly and he just put himself down and with that heart he could go to Jesus.
और यूहन्ना बपतिस्मा जो वहां पर जो था वो अपने आप को वहां पर दे देता है और उस स्वभाव के साथ वो यीशु के पास गया.
That heart only God can give and I cannot create it within myself.
और ऐसा हृदय जो केवल परमेश्वर ही दे सकता है मैं अपने आप से इसको नहीं बना सकता.
So in Isaiah 58 verse 12 which I really take it and I would really want it to happen completely.
और यशायाह 58 उसके 12 वचन को अपने जीवन में लेना चाहता हूँ और वो वास्तविकता मेरे जीवन में बने ये मैं चाहता हूँ.
It is there in the last portion of that verse saying that and thou shall be called the repairer of the breach.
और यहाँ पे लिखा है तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा.
Repairer, something which is broken, not going and poking on it, but trying to build.
और यहाँ पर कुछ चीजें जो बिगड़ी हुई है उसके ऊपर वहां पे कुछ और बढ़ाना नहीं लेकिन उसको बनाना या मरम्मत करना.
The words after that it is written, restoring it to a normal way and the way it is.
और यहाँ पर जो है इन चीजों को उसकी जो वास्तविक जो उसकी जो था उसके ऊपर उसको लेकर आना है, उसको पुनर्स्थापित करना.
Restorer.
पुनः स्थापित करने वाला.
That is what Jesus did, and Jesus had a plan to restore us back to the Father's love.
और यही यीशु मसीह ने किया. यीशु मसीह ने हमें पिता का जो प्रेम है उसके वापस वहाँ पे लौटा कर पुनः स्थापित कर दिया.
And really, you know, and God only can help us to become like this.
और केवल परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है ताकि मैं ऐसे बन सके.
To be a repairer and to be a restorer.
और यहाँ पे मरम्मत करने वाले और पुनः स्थापित करने वाले हम बने.
Without any selfish motive.
और किसी भी स्वार्थी इरादे के बिना.
Yes, Lord, help us and lead us.
प्रभु हमारी सहायता करे और अगुवाई करे.
Because God has loved each and every one of us.
और क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों से प्रेम किया है.